चले देखते हैं आज की आयतें। फतकब्बलहा रब्बुहा बिकबूलिन हसनिन, तो कबूल कर लिया उसको उसके रब ने साथ कबूलियत के अच्छी, उसके रब ने उसको बहुत अच्छी तरह कबूल किया। यानी कबूल अच्छी तरह करने का मतलब क्या है? देखिए ना, एक आप किसी को कुछ चीज देते हैं, वो कहता नहीं नहीं जी मुझे नहीं चाहिए। दूसरे आप किसी को देते हैं तो वो कहता अच्छा मुझे जरूरत तो नहीं है लेकिन चलो मैं ले लेता हूँ, बड़ी हिचकिचाहट के साथ, बड़ी उसके साथ, कोई ज्यादा कोई शौक से नहीं। लेकिन ये क्या, जब आप किसी को देते हैं वो शौक से लेता भी है, अप्रिशिएट भी करता है इसको, उसको उसकी कदर भी करता है, तो ये है अच्छी तरह कबूल करना। अल्लाह ताला का अच्छी तरह कबूल करना क्या मतलब हुआ कि यानी अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया, उनको ले लिया, उनका इंतजाम हैकल में कर दिया। वह अम्बतः नबातन हसन, और अल्लाह ताला ने उनको बढ़ाया, नशो नुमा दी, परवरिश की उनकी, अच्छी परवरिश अल्लाह ने की है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी। देखिए अल्लाह ताला ने अपनी नजरों में आपकी परवरिश की, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो वालिद भी नहीं थे, यहाँ पे भी हजरत मरियम के वालिद भी नहीं। बाज दफा कोई ये सोचता है ये किसी का वालिद नहीं है या वालदा नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत छोटी उम्र में दोनों वालदैन से महरूम थे, तो अब क्या बनेगा, हाय तो इसका कुछ नहीं हो सकता। और हम वालदैन हैं तो हम ही शायद बच्चों को बेहतरीन हम परवान चढ़ा सकते हैं। ठीक है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन कभी भी ये ना सोचें कि वालदैन हैं तो वो कर सकते हैं और जिसके नहीं है तो वो तो बस गया। नहीं, आप देख लें ये बड़े बड़े लोग हैं, इनको अल्लाह ने परवरिश की। इसलिए अल्लाह ताला से दुआएं करें कि अल्लाह तू अच्छी परवरिश करना इनकी, हम नहीं कर सकते। हम कोशिशें कर सकते हैं मगर अल्लाह के ऊपर है। तो परवरिश करना यानी अल्लाह ताला ने उनको अकल समझ अच्छी दी, उनको अच्छा परवान चढ़ाया, अखलाक उनको अच्छा दिया, जिस्मानी तौर पे भी अच्छी नशोनुमा की, रूहानी तौर पे भी अच्छी नशोनुमा की, सीरत सूरत किरदार ये सब चीजें इसमें आ गई ना, बहुत उम्दा दी उनको, अच्छा कैरेक्टर दिया उनको, जहानत दी उनको, ये सब चीजें इसमें आ गई। तो ये वर्ड क्यों आया, नबत, नबत करना तो पौधों के लिए होता है, इसलिए कि पौधे को नशोनुमा देना और इंसान की परवरिश करने में बहुत सिमिलैरिटी, बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा सबर आजमा काम होता है, एक दिन में नहीं हो जाता। पौधों को भी आप छोड़ नहीं सकते, इंसान के बच्चे को भी आप छोड़ नहीं सकते कि वो खुद ही पलता रहेगा, बढ़ता रहेगा जैसे मर्जी हो, फुल टाइम जॉब होती है। और जैसे पौधा नाजुक होता है, इंसान का बच्चा भी बड़ा नाजुक। पौधे को आप अच्छी खाद डालें, सूरज की अच्छी रोशनी मिले तो वो अच्छा ग्रो करता है, हेल्दी होता है, बच्चे के लिए भी इसी का। वकफ़ा लहा ज़करिया, और किफालत की उसकी ज़करिया अलैहि सलाम ने, उन्होंने क्यों किफालत की, ये हम लास्ट आयत में देखेंगे कि उनके ऊपर कैसे जिम्मेदारी आई। उनकी किफालत यानी उनके गार्डियन बने, अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है इनकी सारी चीजों की, मतलब इनकी जाहिर हैकल के अंदर अब इनकी हो रही है परवरिश। इब्ने जरीर ने लिखा है कि अपनी तफसीर में कि हजरत मरियम की वालिदा उनको उठा के कपड़े में लपेटे हुए हैकल लेके आए, और यहाँ के जो भी वो बड़े उनके पादरी थे उनके पास गई, उनको कहा कि ये इस तरह से मैं लेकर आई हूं, तो वो कहने लगे कि हम तो नहीं ले सकते इसको, क्योंकि उस वक्त ये देखिए एक तो एक इन्फेंट है और फिर एक बच्ची है, तो हम कैसे इसको ले लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने इतने अच्छे ख्वाब देखे, उन्होंने अपने ख्वाब सुनाए, और फिर ये उनके इमाम की बेटी भी थी, इसकी वजह से भी वो इस पे राजी हो गए। और फिर क्या हुआ था वो हम अगली आयत में जो एंड 44 आया था उसमें देखेंगे। तो ये भी तौफीक किसको मिली, ये ऑनर किसको मिला, ज़करिया अलैहिस्सलाम को ये ऑनर मिला कि वो इंचार्ज बने, इनके इनके सारे मामलात को की देखभाल करने वाले, इनको सिखाने वाले, इल्म इनकी प्रोग्रेस चेक करने वाले, जैसे हम कहते हैं किसी का इंचार्ज उसकी अटेंडेंस चेक करना, उसका होमवर्क चेक करना, उससे सारे चीजों के इनके इंचार्ज ये थे, और ये इनके खालू भी थे। तो ये भी अल्लाह ताला तौफीक देता है जिसको कि वो उससे नेकी का काम ले ले। तो जैसा करिया अलैह सलाम पैगंबर भी थे उस जमाने के, अल्लाह ने उनको तौफीक दी, उनको चुना। कुल्लमा दखल अलैहा जकरिया मेहराबा, जब कभी भी दाखिल होते थे जकरिया अलैह सलाम मेहराब में। मेहराब कौन सी जगह थी? वो खास कमरा था जहां पे हजरत मरियम इबादत करती थी, यानी अब वो बड़ी हो गई हैं तो वहां पे वो बैठ के इबादत करती थी, इल्म लेती थी। सेपरेट जगह थी, जैसे हम कहते हैं हुजरे बने होते हैं मस्जिदों के साथ। वह ज्यादा इंदहा रिस्कन, तो उनके पास रिस्क पाते थे। वो रिस्क क्या था? दो इसके बारे में बातें आती हैं। एक ये कि आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई मेवे थे या कोई नॉन सीजनल कोई फ्रूट्स थे, बेमौसमी फल थे, तो ये रिस्क था। या दूसरा इसके बारे में उलमा कहते हैं कि सहीफे थे इल्म के, बहुत ज्यादा इल्म ये था। तो जब भी वो आते थे तो इनके पास इल्म व हिकमत की बातें और ऐसे सहीफे देखते थे, या फिर ऐसे बेमौसमी फल जो उस मौसम के ही नहीं है। देखिए उस वक्त तो कोल्ड स्टोरेज नहीं होते थे जहां से फल लाके रख दिया किसी ने, और इनके पास तो कोई और आता भी नहीं था। तो मिसाल के तौर पे अगर आपको सर्दियों में आम मिल जाए तो जाहिर है वो कोल्ड स्टोरेज से आ सकता है आज के दौर में तो, लेकिन उस जमाने में तो ये पॉसिबल ही नहीं था। तो उनके पास ऐसे बेमौसमी फल देखते थे, या इल्म इल्म की बातें हिकमत की बातें ऐसी देखते थे। काला कहते, या मरियम ए मरियम, अन्ना लगी हाजा, कहाँ से आपको ये सब मिलता है? अब एक लड़की, यंग लड़की आप देखें, अब जवाब उनका सुभान अल्लाह आप देखें। इन्हें क्या, हाँ मैं तो बड़ी ये करती हूँ और ऐसे होता है और ऐसे नहीं। कालत कहने लगी, हुआ मिन इंदिल्ला, ये अल्लाह के पास से है, ये मुझे अल्लाह के पास से मिलता है। इन्ना अल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, बेशक अल्लाह रिस्क देता है जिसको वो चाहता है बगैर हिसाब के। और जवाब से ही आपको उनकी ज़हानत पता चल गई कि ये अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। अगर फल थे तो हमें नहीं पता, तफसीर में नहीं पता चलता कि कहाँ से उनको ये फल मिलता था, कैसे आता था। और फिर इनकी आजी पता चलती है कि अगर इल्म है उनके पास या कोई सहीफे हैं तो ये नहीं कि हाँ जी मैं बड़ी अकलमंद हूं, बस मैं मेहनत ही इतनी करती हूं, ऐसे ही तो नहीं मुझे आ गया, नहीं मैं बड़ी अल्लाह वाली हूं तो इसलिए मेरे पास, नहीं हुआ मिन इंदिल्ला, अल्लाह की तरफ से। हमें कोई चीज ऐसी मिल जाए, कोई अनयूजुअल, कोई यूनिक चीज, कोई ऐसी अच्छी चीज जो दूसरों के पास नहीं हो, और दूसरे पूछे आपको आपको कैसे ये हासिल है, कितना कितनी दफा हम ये जवाब देंगे, ये अल्लाह ताला की तरफ से। आप कैसे ये काम सारे कर लेते हैं, आप कैसे पढ़ लेते हैं और ये आप इतने काम कर लेते हैं, अल्लाह की तरफ से। आपको ये नेमतें कैसे मिल गई, अल्लाह की तरफ से, यानी कि हमारी मेहनत से है। इन अल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, ये पहले भी हमने ये बात पढ़ी थी, अल्लाह रिस्क देता है जिसको भी वो चाहता है बगैर हिसाब के। यानी ये भी किसका फैसला होता है, किसको कितना रिस्क देना है, अल्लाह का, जिसको चाहे बगैर हिसाब के दे। फिर आप जेलस क्यों होते हैं, क्यों जेलस होते हैं लोगों के घर देख के, उनकी गाड़ियां देख के, उनके अच्छे कहीं रिश्ते हो जाए तो देख के, कोई बड़ी खुशियों के साथ रह रही हो तो उसको देख के, किसी का शौहर उसको बड़ा पूछता है, उसको बड़ा चाहता हो तो वो देख के। ये सब रिस्क है, सिर्फ पैसा रिस्क नहीं होता, ये जितना कुछ चीजें नेमते होती है ना इंसान के पास, ये रिस्क है। चाहे वो इल्म है, चाहे वो जहानत है, चाहे कोई नेकी की इवन तौफीक मिल जाना, ये भी रिस्क है। चाहे अच्छा घर, अच्छा रिश्ता, अच्छा शौहर किसी को मिल गया, अच्छा स्पाउस मिल गया, ये रिस्क है। तो ये रिस्क अल्लाह जिसको चाहे बगैर हिसाब के अता करें। फिर शिकवा किससे करें, फिर अगर शिकायतें करनी है या इतराज करना है तो अल्लाह की तकसीम पे कर सकते हैं, उस बंदे के ऊपर तो नहीं कर सकते, है ना। हुनालिका, उसी जगह पे, उसी वक्त, एट दिस मोमेंट, दा जकरिया, जकरिया अलैहि सलाम से रहा नहीं गया, उन्होंने दुआ की रब्बा हु अपने रब से। किससे दुआ की, अपने रब से। ये नहीं कहा ए मरियम तुम इतनी नेक बच्ची हो, तुम ही मेरे लिए दुआ कर दो, फिर तुम्हें जो भी ये मिल रहा है तो मेरा भी अल्लाह को कह दो, या अल्लाह इस मरियम के सदके मुझे भी अता कर दे। जाहिर है जब आप किसी को देखते हैं ना, जो किसी के पास कोई बड़ी नेमत, कोई अनयूजुअल चीज ऐसी हो जाती है, तो ओ ये तो बहुत अल्लाह वाली, बस यही हमारे लिए दुआ करेंगे, अब अपने लिए तो दुआ नहीं करनी। नहीं, अब जब उन्होंने देखा कि इस बच्ची को अल्लाह बेमौसमी फल दे सकता है, इस बच्ची को ये सही पे ये इल्म दे सकता है, कहां से दे रहा है वो अल्लाह को पता है, तो मुझे भी दे सकता है बेमौसमी औलाद, तो दिल में एक उम्मीद पैदा हुई और उसी वक्त दुआ की, मौका को जाने नहीं दिया। अच्छा, अगर हम किसी के पास नेमत देखते हैं ना, तो हम भी क्या दुआ करते हैं अपने लिए? अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया ना, सल्लल्लाहु मिन फ़ज़ली, अल्लाह से सवाल करो, उसके फजल में से मांगा करो। क्यों एक दूसरे से जेलस होते हो? किसी की नेमत देख के यानी क्या करना चाहिए? अपने लिए दुआ करनी चाहिए। अगर आपका किसी का बच्चा अच्छा देखते हैं, लायक देखते हैं, नेक देखते हैं, तो ये नहीं कि वो जल बुन जाए, या ये नहीं कि अपने उसके ऊपर डिप्रेस हो कि हाय मेरे बच्चे क्यों नहीं है ऐसे, बल्कि उस वक्त क्या करना चाहिए, अल्लाह तूने इसको अता किया मुझे भी अता कर दे। ये सही अप्रोच है। अब जिसकी जो चीज देखते हैं उसके ऊपर अब चैन नहीं आता, क्यों उसको ये मिल गया, उसके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी थी, अब वो उसी के अंदर घुलते रहते हैं, जलते रहते हैं। तो जलने की जरूरत नहीं, जहां से उसको मिला है वहीं से मुझे और आपको भी मिल सकता है। तो अल्लाह से मांगा करें उस वक्त, खाला रब्बी हबली मिल्लतुन का ज़ुर्रियतुन तय्यबा, कितनी दिल में उनकी ख्वाहिश होगी ना। क्या आपका मतलब है पहली दफा मांग रहे होंगे वो? नहीं, जाहिर है पहले भी मांगते होंगे, लेकिन अब जब ये देखा ना, तो एक रूह उठी दिल के अंदर कि अल्लाह तो इसको दे सकता है, अल्लाह मुझे भी अपने पास से अता फरमा दे। औलाद पाकीज़ा, इतने बूढ़े हो गए हुए थे, अभी मैं आपको बताऊंगी सूरह मरियम में क्या इनकी हालत थी, यानी तकरीबन 100 साल के करीब इनकी एज थी, और क्या कह रहे हैं, अल्लाह मुझे दे देना औलाद तय्यब। सुर्रियतन तय्यबा कैसी होती है? तय्यब हम कहते हैं ना पाकीज़ा, यानी नेक साले, यानी ऐसी औलाद जिसका किरदार भी पाक हो, जिसका अमल भी पाक हो, जिसका ईमान भी पाक हो, जिसकी हेल्थ हेल्दी भी हो, यानी सेहत भी सेहत वाली भी हो, उसमें भी यानी फिजिकली भी पाक हो, मेंटली भी पाक हो, स्पिरिचुअली भी पाक हो, हर तरह की पाकी आ गई, हर तरह का तय्यब होना इसमें आ गया। ऐसी तय्यब मतलब वो जो दिल को खुश कर दे, दिल को मुतमईन कर दे, तो ऐसा बच्चा तो मुझे अता फरमा, जिस्मानी तौर पर भी सही हो, सही सलामत हो, रूहानी तौर पे भी। तो इतनी अच्छी ये दुआ है हर उस औरत के लिए जो औलाद की नेमत चाहती है। तो इन्ना का समी और दुआ, अल्लाह तू तो सुनने वाला दुआ का, तू सुनने वाला अल्लाह, तू किसी की दुआ को रद्द नहीं करता, तू सुनता है दुआओं का। अब आप देखें, पहले भी इन्होंने दुआ मांगी हुई, तो अब क्या होना था? कोई और होता तो कहता लो आज तक तो दुआ कबूल नहीं हुई, अब क्या होनी, लो छोड़ो अब क्या मांगना, अब तो वैसे ही मैं बूढ़ा हो गया और अब क्या उम्मीद रह जाती, और अल्लाह ने तो मेरी कभी सुनी ही नहीं। तो इतनी प्यारी इनकी एक बात मुझे बहुत ही पसंद है जो सूरह मरियम में आती है, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये है तेरे परवरदिगार की उस पर मेहरबानी का जिक्र जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर किया, जबकि उसने अपने रब से चुपके चुपके दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और सर बुढ़ापे की वजह से भड़क रहा है, लेकिन क्या कहते हैं, ये बात है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, वलम अकुम बि दुआइका रब्बी शकिया, अल्लाह मैं तुझसे मांग के कभी महरूम नहीं रहा। हमारी बात शुरू किससे होती है? हम दुआएं मांगने लगते हैं तो कैसे शुरू करते हैं, हाय मेरी तो वैसे सुनी नहीं जाती, मेरी नहीं सुनी जाती। और वो क्या कह रहे हैं, सारी जिंदगी औलाद नहीं हुई। मैंने आपको बताया ना, को जरूरी हो, जरूर ऐसा होगा, जो अब भी जाके अगर मांग रहे हैं तो जरूर ऐसा होगा कि पहले भी मांगते होंगे। जो बंदा इतने बुढ़ापे में 100 साल के करीब पहुंच के कि जो कह रहा है कि अल्लाह मेरा सर बुढ़ापे से भड़क रहा है, या अल्लाह मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, और फिर भी अगर वो मांग रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने पहले भी मांगी है और उसके दिल में ये ख्वाहिश थी पहले से, आज नहीं कोई पॉप अप हुई। लेकिन वो फिर भी ये नहीं कहता आज तक तो मांगा अल्लाह, आज तक तो मिला नहीं, चल अभी दे दे। नहीं, सुभान अल्लाह, वलम अकुम बि दुआई का रब्बी शकिया। अल्लाह अकबर। ऐसे अब हमें अपने दुख को, अपने गम को, अपने हाल को अल्लाह के आगे ऐसे रखना चाहिए कि अल्लाह पहले अपनी सारी बात बता के, अल्लाह मेरा ये गम है, मेरा ये दुख है, ये नहीं कि बस अल्लाह ये दे दे, ये अल्लाह मुझे ये मेरे ऊपर ये गुजर रही है, मैं इस हाल में हूं। पहले उन्होंने अपना हाल बताया, मेरी हड्डियां कमजोर है, मेरा सर बुढ़ापे की वजह से भड़क रहा है, यानी सर सफेद हो गया सारा। लेकिन अल्लाह मैं तुझसे मांग के कभी महरूम नहीं रहा। हालात कितने ही इंसान के अनफेवरेबल हो, तंग हो, और उम्मीद कभी नहीं छोड़, ये नहीं कभी सोचना मेरा कहां से सुनी जानी। अच्छा तो फिर नहीं सुनी जानी तो जाओ, फिर जो तुम अल्लाह के बारे में गुमान करते हो फिर वैसा ही है। जो आप अल्लाह के बारे में गुमान करेंगे वही होगा ना। अल्लाह ताला कहते हैं मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक। अगर आप ये कहते हैं नहीं मेरी कभी सुनी ही नहीं जानी, मेरी तो कभी सुनी जाती नहीं है, तो ठीक है, नहीं फिर जाती है सुनी, ठीक है। तो फिर आगे है कि मुझे अपने मरने के बाद अपने कराबतदारों का डर है कि यानी मेरे मरने के बाद उनका क्या बनेगा। कोई अगर नहीं ये वाज करेगा, नसीहत करेगा, तो मेरे रिश्तेदार हैं ये, उनमें से कोई भी अहल नहीं है इसका, तो फिर वो सही रास्ते से गुमराह ना हो जाए। और मेरी बीवी पे बांझ है, तो मुझे अपने पास से वारिस अता फरमा, जो मेरा भी वारिस हो और याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान का भी वारिस हो, और मेरे रब तू उसे मकबूल बंदा बना दे। वजअलहु रब्बी रदिया, हाँ पसंदीदा बना ले जनाब। दुआएं देखें कैसी हैं। तो इनकी इतनी खूबसूरत दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई। और ये नहीं उन्होंने कहा कि अब मैं ऐसी दुआ करूंगा तो मुझे तो शर्म आती है ऐसी दुआ करते हुए, और मैं कैसे मांग लूं अल्लाह से, लोग क्या कहेंगे। आज तो इतना बुढ़ापा तो दूर की बात है, अगर कि कोई किसी के बच्चे बड़े हो जाएं और उसको औलाद, उन्हें औलाद हो जाए, तो फिर हम मुसलमान हैं लेकिन हमारी बातें सुना करें। कभी सुनी है आपने ऐसी बातें लोगों को करते हुए? ये सुना करें कि देखो इसको क्या आ रही है, ये पैगंबर थे। और अगर हम इस तरह की चीजों के ऊपर बातें बनाने वाले हैं ना, तो सोचिए हम पैगंबरों पे भी बातें बनाने वाले होते हैं। क्योंकि ये हम आज अगर ये कर रहे हैं तो वो तो पैगंबर इतने बूढ़े थे, फिर हम उस वक्त क्या करते हैं, हम उनको क्या कह रहे होते हैं। तो ये तो पैगंबर के साथ हुआ है, और उस चीज को भी हम भूल के, इन्हीं पैगंबर्स के साथ नहीं हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कदर पैगंबर के साथ भी हुआ है। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं तो वो कितने बुढ़ापे को पहुंच चुके थे, लेकिन हम मुसलमान हो के कितनी बातें बनाते हैं, और ये सोचते हैं कि इनको कितनी आखर आई हुई थी, और इसको बेशर्मी की बात समझते हैं। तो फिर ये क्या नऊजु बिल्ला, ये बेशर्मी पैगंबरों में भी थी, ये कहना चाहते हैं हम? तो तौबा करनी चाहिए ऐसी बातों से। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फनादतुल मलाइकत वहुवा कायम युसल्ली फिल मेहराब, बस पुकारा उसको फरिश्तों ने, यानी अभी उन्होंने दुआ की थी, और दुआ क्या की थी, रब्बी हबली। अच्छा एक बात, हबली का मैंने आपको तर्जुमा नहीं बताया, हबली मैंने आपको बताया ना तोहफा, एक अल्लाह ताला ऐसी एक मुझे ऐसे एक अता अपनी तरफ से अता फरमा। فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، پکارا اس کو فرشتوں نے اس حال میں کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے محراب میں. اب ان کی الگ محراب تھی، ان کی محراب وہ نہیں ہے جو حضرت مریم کی تھی، ان کی اپنی محراب تھی، یعنی محراب وہ خاص جگہ جہاں پہ عبادت کرتے تھے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو نیک لوگوں کا طریقہ ہوتا تھا نا، وہ یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے ایک خاص جگہ اپنے لیے مقرر کی ہوتی تھی اپنی عبادت کے لیے. اگر ہم بھی کر سکیں تو، ضروری نہیں میں آپ کو کہہ رہی ہوں کوئی خاص کمرہ ہی آپ بنائیں، ہو سکتا ہے گھروں کے اندر نہیں اتنی گنجائش ہو کہ خاص نماز کا کمرہ ہو سکے، لیکن چلو ایک اسپاٹ آپ بنا لیں جہاں پہ آپ اپنی عبادت کریں، جہاں پہ بیٹھ کے آپ اپنی پڑھائی کریں، جہاں پہ آپ کی ساری چیزیں موجود ہوں جو آپ جو بھی آپ کو یعنی اپنی تعلیم لینے کے لیے چاہیے، تو وہ ایک خاص آپ کا کارنر ہو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ڈیڈیکیشن. آپ جو بھی جگہ مقرر اپنی کرتی ہیں وہ پھر ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ بہت شور شرابہ ہنگامہ نہ ہو، جہاں پہ بہت زیادہ ڈسٹریکشنز نہ ہو، جہاں پہ کوئی ٹی وی نہ چل رہے ہوں، تاکہ آپ فوکس کر سکیں. یہ محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی وجہ بھی کیا ہے؟ فوکس، تاکہ کوئی چیز انسان کو ڈسٹرب نہ کرے. تو کوشش ایسی ہونی چاہیے کہ ایسا اسپاٹ اپنے لیے رکھیں. لیکن آج تو کیا کریں، اور چیزیں نہیں بھی ہوں تو ہمارا فون ہی کافی ہے ہمیں فوکس سے ہٹانے کے لیے، جو ساتھ ہر وقت ہمارے پڑا ہوتا ہے اور پھر ہم اس سے ڈسٹریکٹ ہوتے رہتے ہیں. تو اس طرح کی ڈسٹریکشنز کو الگ کرنا چاہیے. جب اللہ کے لیے کھڑے ہوں یا اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے اور آپ نے کوئی وقت اللہ کو دے دیا نا، تو اس کو ڈسٹریکشن پروف کریں، ڈسٹریکشنز ہٹا دیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس حال میں کھڑے ہوئے تھے، ان کے پاس فرشتے آئے. اب بعض جگہ پہ آتا ہے کہ فرشتوں سے مراد یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام، لیکن پھر فرشتے کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کی تعظیم کے لیے. جیسے کسی کو بہت عزت دی جاتی ہے تو پھر اس کو سنگولر کی بجائے پلورل کی فارم میں اس کو کہا جاتا ہے نا، تو اسی طرح جبرائیل علیہ السلام آئے لیکن ان کو فرشتوں کہا گیا. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، یہ نہیں کہا بیٹے کی، یحییٰ کی، یعنی نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود بتا کے بھیجا. مصدقم بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرنے والا ہوگا ایک کلمے کی اللہ کی طرف سے، کلمۃ اللہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا. کلمۃ اللہ سے مراد کیا ہے؟ دو باتیں مراد ہیں. نمبر ون، اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتے ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو اللہ کا کلمہ ہے، ان کی یہ تصدیق کریں گے کہ اللہ کے نبی ہیں. اور ان کو کلمۃ اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ باپ تو تھا نہیں ان کا کوئی، تو وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. باقی سارے انسان تو ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، وہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. نمبر ٹو، اس سے مطلب ہے کہ اللہ کی آیات، اس کے کلام، اس کی کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. وسیدن، اور سید ہوں گے یعنی امام ہوں گے، لوگ ان کو فالو کریں گے، لیڈر ہوں گے، سبحان اللہ. وحصوراً، اور حصر سے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یعنی خود کو کنٹرول کرنے والے، کنفائن کرنے والے، لمٹ کرنے والے. جیسے انسان اپنی خواہشات کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے نا، ہم نے پہلے خواہشات کی بات پڑھی تھی کہ خواہشات کی جو محبت ہے وہ بھی انسان کو پیاری ہوتی ہے. تو یہ اپنے آپ کو ایسی تمام خواہشات سے، اور خواہشات میں سب سے پہلی چیز کیا تھی جو انسان کو سب سے زیادہ آدمی کے لیے محبوب ہوتی ہے؟ وہ عورت ہے جو سب سے زیادہ اس کے لیے اٹریکٹیو ہوتی. تو عورتوں سے دور رہنے والے، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، نہ ان کو کوئی خواہش تھی. اور پھر اور دنیا کی مال کمانا یا دنیا داری یا اور دنیا کی جتنی اٹریکشنز، فن، انٹرٹینمنٹ، ان سب سے دور تھے. پاک باز اسی لیے کہا گیا نا، وہ خود حصر میں ہے نا، لمٹ کرنے والے، خود کو کنٹرول کرنے والے. ٹھیک ہے، وہ نبی یا نبی ہوں گے، سبحان اللہ، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے ہوں گے. اب کتنی ساری کوالٹیز ہوں گی، یہ پانچ کوالٹیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی بشارت زکریہ علیہ السلام کو دی. اور یہ کیا ہے؟ سراسر ان کے صبر کا پھل، ان کے صبر کا پھل. اللہ اکبر. اسی طرح سورہ مریم میں آتا ہے نا، اے زکریہ، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام यहया होगा, और ये नाम इससे पहले कभी किसी को नहीं दिया गया। हमने इससे पहले इसका हम नाम भी किसी को नहीं किया, यानी ये नाम इससे पहले कभी था ही नहीं, ठीक है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने एक यूनिक नाम भी उनको दिया जो अल्लाह ताला ने रखा, माँ बाप ने नहीं रखा। यहया, कितना प्यारा नाम है ये। तो अब जब ये खुशखबरी उनको मिली, तो अब एक नेचुरली एक बात जहन में आती है, दुआ तो मांग ली थी लेकिन अल्लाह मेरी कैसे हो सकती औलाद, काला रब्बी अन्ना ये कौन ली गुलाम, अल्लाह मेरे बच्चा कैसे हो सकता है, वो कद बलग नहीं अल किबर हुआ अमरौती आखिर, मैं तो बुढ़ापे को पहुंच चुका है, मेरी बीवी भी बांझ है, सारी जिंदगी तो उसको औलाद हुई नहीं, अब जाके औलाद होगी, वो भी बीवी भी इतनी एज की हो चुकी थी, खुद 100 साल के करीब थे, तो बीवी सोचे तो याला कैसी होगी, यानी असबाब तो कुछ नहीं है, असबाब के मुताबिक देखा जाए तो नहीं हो सकती औलाद, इंसान की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है जब उसका बुढ़ापा होता है, तो मेरे तो पहले ही बच्चे नहीं थे, अब कैसे होंगे, और इतने वीक थे, और औरत भी बांझ है, तो दोनों चीजें जो जरूरी हैं दोनों में से कोई भी नहीं है, ना मर्द इस काबिल है ना औरत इस काबिल। अल्लाह ताला ने सिर्फ क्या फरमाया, काला कदालिक अल्लाहु यफअलु मा यशा, अल्लाह ताला करता है जो वो चाहता है, अल्लाह ताला जैसे चाहे करे, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत वला मुअतिअ लिमा मनअत, अल्लाह जब किसी को देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, और रोकना चाहे तो किसी को कोई दे नहीं सकता, और उसको सबब की जरूरत नहीं है, वरना सबब तो यहां पे थे ही नहीं। ऐसे हमें पता चलता है कि जब नामुमकिन चीजें भी होती है ना, तब भी मायूस नहीं होना चाहिए, तब भी इंसान ये ना सोचे कि ये होगा कैसे, सबब तो नहीं नजर, सबब बनाना अल्लाह का काम है, ये सबब कैसे बनेंगे क्या होगा ये अल्लाह ताला जानता है। قال رب اجعل لي آية، فرمایا اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی کر دے، کوئی سائن ایسا مجھے دے دے۔ اب ایسے نہیں کہ ان کو کوئی یقین نہیں تھا تو اس لیے کوئی سائن مانگ رہے تھے، بس خوشی بھی ہے حیرانی بھی ہے، اب کیا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اے اللہ مجھے دکھا تو صحیح کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، آپ نے پڑھا ہے نا سورہ بقرہ کہ مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وہ پرندے لے، چار پرندے لے لو ان کو پہاڑوں پہ رکھ دو، تو یہ نہیں مطلب تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں، پتا ہے، کہتے مجھے پتا ہے اللہ لیکن مجھے دکھا تو صحیح، اس طرح یہ کہہ رہے ہیں اللہ میرے کیسے ہوگا، اللہ مجھے کوئی نشانی دکھا دے۔ قال آیاتک، کہا نشانی دے رہی ہے، اللہ تکلم الناس کہ تو نہ کلام کر سکے گا لوگوں سے، کتنی دیر، ثلاثۃ ایام 3 دن تک، الا رمزا مگر اشارے سے، یعنی جب تمہاری بیوی کنسیو کرے گی تو وہ کوئی پریگنینسی ٹیسٹ تو ہوگا نہیں، وہاں پہ تو تھے نہیں ایسے، تو پھر اس وقت کیا ہے تم سے بات نہیں ہو سکے گی، بات چیت بند ہو جائے گی، زبان بند ہو جائے گی، اور کیا کرنا پھر تم اس وقت جب زبان بند ہو جائے، وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، تو کام کرنا بہت زیادہ، اللہ کا ذکر کرنا اور اس کی تسبیح صبح اور شام کرنا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ نا انسان جب ٹو مچ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا عادی ہوتا ہے نا، تو وہ اللہ کا ذکر کرنا بھول جاتا ہے، ظاہر اللہ کے ذکر کا تو موقع نہیں ملے گا جب آپ بہت باتیں کر رہے ہوں، تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کو جب لوگوں سے ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے نا، جیسے کہ آج کل ہے کہ آپ لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں، اس طرح سے نہیں ملنا جلنا ہو سکتا جیسے کہ عام دنوں میں ہوتا تھا، تو اب اس ڈسکنیکٹ ہونے پہ ڈپریس نہیں ہونا، اس کی وجہ سے ایسے غمگین ہو کے نہیں بیٹھ جانا کہ ہائے اب کیا کریں، میں تو پہلے ملتی جلتی تھی اب کیا، یا پھر گالیاں دینے لگے کرونا کو یا کیا کرنے لگے، نہیں، अल्लाह ताला डिस्कनेक्ट करता ना लोगों से, तो उसका भी एक मकसद होता कि अब आप लोगों से कट के अल्लाह के हों। लोगों से बातचीत बंद कराता है ना, तो इसलिए ताकि अब आप अल्लाह से बात करें। ठीक है, तो इसको भी अपने लिए एक मौका समझें कि अल्लाह ने एक मौका दे दिया। आम दिन होते तो शायद ये मौका ही नहीं मिलता, इतनी हमारी ज्यादा कोई पार्टी, कोई लंच, कोई वहां, उसके ऊपर आधा दिन गुजर जाता है। ये दावत, वो दावत, ये मिलना जुलना, वो बाजार फलां, सब कुछ बंद कर दिया अल्लाह ने कि बस अब आप उससे बातें करें। ज़करिया अलैहिस्सलाम की भी अल्लाह ताला ने जुबान बंद कर दी। अब इंसानों से तो बात नहीं हो सकती, इशारे में कितनी इंसान बात कर सकता है, ज्यादा नहीं कर सकता ना, लिमिटेड हो गई बात। तो अब बातें अल्लाह से करना, ठीक है। अल्लाह अकबर। तो हमें भी अब बातें करनी है अल्लाह के साथ। अब ये भी हमें पता चला कि देखें, जिस वक्त कोई खुशखबरी मिले तो अब उसके बाद रिएक्शन क्या होना चाहिए। नेमत देने वाले को ना इंसान भूले, बल्कि उसका जिक्र कितना करे, जितना पहले करते थे उससे भी ज्यादा। पहले नहीं भला ज़करिया अलैहिस्सलाम जिक्र करते होंगे अल्लाह का, वो अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह ताला फिर भी उनको फरमा रहा है वज़कुर रब्बका कतीरन। हम कहते हैं और कितना करें, हम करते तो हैं, अब और इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो पहले ही नमाज पढ़ती हूँ, पहले ही कुरान पढ़ती हूँ, पहले ही जिक्र करती हूँ। अगर हमें कोई कह दे कि अब आप रमजान है, अब आप और अल्लाह का जिक्र बढ़ा दें, या आप और आपको नेमत मिली, आप और अल्लाह ताला को याद करें, कहते हैं भले ही करते हैं। तो नहीं, कसीरा, अल्लाह अगर अपने पैगंबर को ये फरमा रहा है ना, तो हम सब का क्या जिक्र होगा और क्या हम करते होंगे। तो जब नेमत मिले तब जिक्र ज्यादा करना है और बढ़ा देना है, ठीक है। लोगों के साथ बातचीत कम, अल्लाह के साथ बातचीत ज्यादा। जिक्र क्या है, अल्लाह की याद है। और हदीस में आता है अल्लाह ताला इंसान के साथ होता है जब तक उसकी जुबान अल्लाह के जिक्र में हिलती रहती है, अल्लाह उसके साथ होता है। अल्लाह का साथ चाहते हैं, जिक्र बढ़ा दें, जिक्र किया करें। और जो वक्त लोगों के साथ बातें करने में लगता था खुशी मिलने के ऊपर, अल्लाह के जिक्र में लगना चाहिए। और सब पे फिल अशी वले बकौर, तस्बीह करो अल्लाह की सुबह और शाम। अच्छा, खास तौर पे औकात का भी जिक्र यहाँ पे आया। वैसे अल्लाह का जनरल जिक्र बहुत ज्यादा करना है, ये नहीं कि सिर्फ सुबह और शाम करना, ये नहीं कहा जा रहा, कतीरा बहुत ज्यादा। और स्पेसिफिकली तस्बीह करना शाम के वक्त और सुबह के वक्त, ये दो औकात आपको पता है। हमें भी मसनून दुआएं इस वक्त की सिखाई गई, मसनून अजगार है इस वक्त के, जो स्पेसिफिकली फजर के बाद करने के, असर के बाद करने के, वो जरूर करने चाहिए। वो खास टाइम है इनका, वो किसी और टाइम पे करेंगे तो वो नहीं उनकी अफादियत, ठीक है। तो हमारे ये रवैये होने चाहिए। देख लिया अब आपने नेक लोगों के क्या तरीके होते हैं, जब उनको नेमतें मिलती हैं, जब उनको खुशी की खबर मिलती है, गुड न्यूज उनको मिलती है, वाह वाह, और चीखना चिल्लाना और आपे से बाहर हो जाना, और पता नहीं क्या क्या, किस किस किस्म के रिएक्शंस होते हैं। हमें रिएक्शन क्या सिखाया गया, सजदाए शुक्र, फौरन सजदे में चले जाओ। ये मसनून तरीका है, जब खुशी मिले एकदम तो उस फौरन सजदे में जाओ, अल्लाह को याद करो। सजदे में इंसान अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है, और वैसे भी इंसान अल्लाह का बहुत जिक्र करे। और अक्सर ये होता है कि हम खुशियां मांगते हैं, बहुत अरसे से मांग रहे थे, फॉर एग्जाम्पल खुशी मांगते हैं कि अल्लाह ताला शादी हो जाए, शादी हो जाए, बस कि अच्छा रिश्ता मिल जाए। ये जब शादी होती है तो क्या होता है, अल्लाह सबसे पहले भूलता, अल्लाह ही नहीं होता, बाकी सबको मनाया जाता है, रूठे रिश्तेदारों को भी मना के हम ले आते हैं शादी पे, लेकिन अल्लाह को नाराज कर देते हैं। ऐसा ही है ना। तो खुशी मिलने पर तो खुशी देने वाले को सबसे ज्यादा याद करना चाहिए, हम उलट क्यों कर देते हैं।